बिलासपुर
की आवाज
सभी श्रोता साथी स्वीकार करें अलंकृता का नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से आपकी अलंकृता आपको करवा रही थी जीजियो दर्शन गजर कार्यक्रम के संग जीजियो दर्शन में, और आज के अंक में मैं आपको मिलवाने वाली हूँ क्लब उड़ान से। उड़ान गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का ऑफिशियल मैगजीन क्लब है जो कि मैगजीन का निर्माण करता है, परंतु खास बात ये है कि इस मैगजीन में मैगजीन के कवर से लेकर पेज नंबर तक, यानी कि प्रत्येक पेज डिजाइन तक, सब कुछ गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा किया हुआ होता है। और साथ ही में उड़ान जीजीओ का पहला क्लब है। तो आइए उड़ान के बारे में उड़ान के मेंबर से थोड़ा और जानते हैं। श्रोता साथियों, आज हमारे साथ हैं उड़ान के सीजन 5 और सीजन 6 के मेंबर जो कि जीजीओ में थे 2014 से 2018 के बीच, और उड़ान में एज अ टेक्निकल बोर्ड मेंबर इन्होंने ज्वाइन किया था अपने सेकेंड ईयर में। ये एज अ कोऑर्डिनेटर उड़ान के साथ काम कर रहे थे। आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं इनका उड़ान में सफर। तो अगली आवाज आप सुनेंगे अमन चंद्रा जी।
हेलो, हाय एवरीवन, मेरा नाम अमन है।
सर, आपने अपने ऑडिशन क्लियर करके उड़ान में एज अ मेंबर ज्वाइन किया टेक्निकल बोर्ड, तो वहां से आपका सफर कैसा रहा एज अ उड़ान मेंबर?
काफी अच्छा था। मैं ऐसा हमेशा बोलता था उस समय भी, मतलब एटलीस्ट समझ में आया मुझे कि मैंने ज्वाइन करना जो था क्या मेरे काम आया। बेसिकली मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट इंसान था, और उड़ान में ज्वाइन करने के बाद तुमको जो एक्सपोजर मिलता है, आई थिंक दैट इज रियली हेल्पफुल। एंड आई थिंक वही वो एक चीज थी जो आई थिंक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट किया उसने मुझ पर, कि जो बेसिकली व्हेन यू वर्क इन अ टीम, जब आप किसी टीम में काम करते हैं तो कैसे किसी के साथ अगर दूसरे किसी दूसरे कोर्स के, दूसरे डिपार्टमेंट के सीनियर के, कोई मास्टर का है, तो उनके साथ कैसे मिलके एक कोई कॉमन लक्ष्य को अचीव किया जाए। सो आई थिंक वो एक सबसे बड़ी मेरा जो है मतलब अंडरस्टैंडिंग एंड गिफ्ट मिला मुझे उड़ान में काम करके।
बिल्कुल। तो जब आपने ज्वाइन किया उड़ान, तो क्या आप सोचे कि आपको एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल पाएगा और इतने सारे लोगों से इतना अच्छा एक बॉन्ड क्रिएट हो पाएगा?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो सोचा था कि मुझे ऐसे फोटोशॉप वगैरह चलाने में इंटरेस्ट था, मैंने सोचा कि चलो ये आता है तो इसके इसी बहाने कुछ ऐसे मन लगेगा, टाइम पास होगा, इसी के लिए मैंने अप्लाई किया। बट या जो रिलेशनशिप बने, जो दोस्त बने, वो आज तक जिंदा है। हमारा दोस्त का सर्कल इट्स स्टिल एक्टिव। आई डोंट नो हाउ टू टेल यू, बट या एक हमारा कोर ग्रुप है, हम लोग उसको खुटाली बोलते हैं, तो पीपल हु नो दे नो। So basically we were the founding members of that term and okay. And was still active, it's still alive.
श्रोताओं को एक खुटालू के बारे में बताना चाहेंगे?
तो बेसिकली खुटालू का जो कंसेप्ट था ना, वो ये था कि हम लोग जो है जब उड़ान में काम करते थे ना, तो जब खासकर जब फिनिशिंग का टाइम आया था, जब मैगजीन को फिनिश करना है, डेडलाइन पास हो गया, अरे यार लॉन्च करना है, तो काफी जैसे दिन रात काम चलता था, किसी के घर पे रह के, कॉलेज में भी काफी देर तक, शाम हो गया, 7-8 बज गया है, और फिर उसके बाद किसी के घर पे रुक के, कोई कोऑर्डिनेटर है मेरे घर पे, या उस समय सीजन 5 में मनीष दीक्षित थे उनके घर पे, किसी किसी घर पे कैसे कैसे काम होता था, तो रात हो गई, ये हो गया, तो काफी ऐसा क्रिटिकल आ जाता था कि चलो काम हमने बहुत कर लिया, अब कुछ फन किया। तो उसी में अचानक से आइडिया वहीं पे आया था कि ऐसा करते हैं, नाइट आउट किया जाए, ठीक है, हमने बहुत मेहनत किया, लेट्स सेलिब्रेट। तो उसी में हमने जो है एक दिन अचानक जैसे डिसाइड किया कि, क्योंकि हम लोग सब लोग कोनी ओनी के आसपास रहते थे, तो डिसाइड हुआ कि चलो अब चलते हैं खूटा घाट, आसपास क्या है, वही है सबसे नियरेस्ट, सबसे इजी। तो हम सब ने बाइक निकाला और सब लोग ऐसे ट्रिप बनाकर खूटा घाट गए। तो कहानी ये है कि हम लोग गए तो हम लोग खाने के लिए कुछ था नहीं, तो हम लोगों ने सिर्फ आलू लिया था, ठीक है, आलू साथ में लिया था, और आलू को लेकर गए थे, और वो बस आलू को हमने आग वहाँ पे लकड़ियाँ कलेक्ट की और खूटा घाट पे आग जला के आलू को खाया। अच्छा। वही खा के हम पूरा ग्रुप सोया, ठीक है, दैट वाज रियली फन थिंग। एंड उसी में उसी समय नाम पड़ा कि खूटा घाट में जो हमने आलू खाया, सो नाउ इट्स कॉल्ड खूटालू।
अच्छा।
Yeah, so Hitesh Jangra is another of my friends and Udaan member since season 5 and 6. He was photography member there. He's still a big photographer right now. So usi ne actually primarily ye naam diya tha. So uska credit hai. So yeah, that's the story of Khatalu. So that sort of got continued. I think aaj bhi wo term, mujhe jaisa maine jaisa suna, aaj bhi koi na koi usko bol deta hai kahin aap raat ki trip ko Khatalu. At least kuch saal pehle usko maine suna tha. Abhi mujhe pata nahi.
बिल्कुल सर, आपकी बात एकदम सही है. खुटालू की जो शुरुआत थी वो यानी कि सीजन 5 और सीजन 6 से हुई थी.
हाँ, 5 के एंड पे हुई थी. 5 का जो एंड हो रहा था ना, जैसे मैंने बताया ना, बहुत काम हो रहा था, राइट?
जी
जी. ज्यादा काम होता है तो सब रात रात देर देर तक बैठते हैं साथ में, तो बॉन्डिंग बढ़ती है उसी समय, राइट? अदर पूरा एकदम बहुत लग जान लगा के काम कर रहे हैं, साथ में बैठ के खाना वाना अरे खाओगे उसे, तो उससे उसी पॉइंट पे क्रिएट हुआ था एंड ऑफ सीजन 5.
कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि उड़ान फर्स्ट यूनिवर्सिटी क्लब है.
हाँ, ये अच्छा कि तुमने मेंशन किया, क्योंकि जब उड़ान सीजन 5 था ना, 5 तक इनफैक्ट उड़ान वो स्टिल अ मैगजीन, एंड आज भी आई थिंक टर्मिनोलॉजी उसका मैगजीन का ही है. बट वो जो नीव थी ना कि उड़ान इज उड़ान इज नॉट जस्ट, उसी समय एक्चुअली था टैगलाइन उड़ान द कल्चर. इवन यूट्यूब चैनल भी है, तो उड़ान द कल्चर का आइडिया था कि हाँ, उड़ान इज नॉट जस्ट अ मैगजीन, इट्स अ like it's the culture of the university. तो हमने ट्राई किया था इवन सीजन 6 में कि लेट्स गो बियॉन्ड अ मैगजीन. हमने उस समय सीजन 6 में इनफैक्ट अटेम्प्ट भी किया था. आई वुड नॉट से 100% सक्सेसफुल, बट अटेम्प्ट किया था कि हाँ कुछ कुछ ऐसा हो कि मैगजीन इज एन एंड रिजल्ट, बट हम लोग कुछ कुछ एक्टिविटीज जो है थ्रू आउट बियर करें. सो इनफैक्ट हमने ये भी स्टार्ट किया था कि people can submit their artwork, literature, कुछ भी, और हम लोग उसको social media पे feature करेंगे. So that was like कि magazine is now digital magazine as well, मतलब social media पे भी आ रहा है. वो idea था उस तरह से start करने का. और even मतलब collaboration में, जैसे अर्चिंस के साथ कुछ collaboration में कोई एक event करना, या हम लोग जब भी कुछ भी करते थे, इनफैक्ट हम लोग का ये भी कॉन्सेप्ट था कि whenever you used to do any event, हम ट्राई करते थे कि यूनिवर्सिटी के सारे ग्रुप्स का एक परफॉर्मेंस हो. डांस वाला जो था, अर्शान वाज माय फ्रेंड, अर्शान वाज आल्सो वन ऑफ द फर्स्ट मेंबर्स. तो हम लोग, मैं अर्शान को बोलता था कि यार तुम लोग करो एक डांस इसमें. एंड देन अर्चिंस वाज आल्सो आवर वेरी गुड फ्रेंड. मैं तो बाद में अर्चिंस में भी मैंने काम किया था. तो वो सबको एक साथ बुलाकर एक हम लोग ट्राई करते थे कि उड़ान बिकम्स अ कल्मिनेशन ऑफ ऑल दैट हैपेंड विद द यूनिवर्सिटी. तो यही था आइडिया. तो हमने अटेम्प्ट किया था. आई थिंक दैट वाज द आईडिया, क्योंकि हम लोग का बेसिकली यूनिवर्सिटी लेवल देयर वाजंट एनी फेस्ट, कोई ऐसा फेस्ट नहीं था यूनिवर्सिटी लेवल का, सब डिपार्टमेंट लेवल था. तो एक आइडिया था कि उड़ान के नाम पे ही एटलीस्ट सारे यूनिवर्सिटी के लोग एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ मिले. बट हाँ, आई डोंट नो कहाँ हो गया वो, बट दैट वाज द आइडिया.
बिल्कुल सर, और इस विषय में तो ज्यादा मुझे पता नहीं है कि अभी वो कल्चर कितना आगे बढ़ा है, कितना नहीं बढ़ा है. पर बात करते हैं आपके सीजन 6 के बारे में, कि जैसे आपने सीजन 5 में एज अ मेंबर ज्वाइन किया था और सीजन 6 में आप कोऑर्डिनेटर थे टीम के, तो आपको अपने अंदर क्या चेंजेस महसूस हुए और आपने किस तरीके से टीम में चेंजेस लाए?
ओके, आई थिंक ये सवाल तो कोई और बोले तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि यह खुद की तारीफ जैसा हो जाएगा. कोई और मेरे बारे में बोल रहे तो ज्यादा अच्छा है. बट अब मैं फिर भी एज अ लर्निंग बता सकता हूँ कि जब मैं वही जस्ट मैं जस्ट सेकेंड ईयर का लड़का था यार, कोऑर्डिनेटर बना दिया गया था. सेकेंड ईयर क्या होता है, स्कूल से निकले हुए 2 साल पे है कि नहीं?
बिल्कुल बिल्कुल. और ज्यादा सर पहली बार हुआ था, पहली बार की कोई सेकेंड ईयर का स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर बना हूँ.
मैं ये क्लेम नहीं कहूंगा ऐसे, बट हाँ वन ऑफ द फर्स्ट तो था मैं. मुझे जितना मुझे नॉलेज है, जितना मुझे अंदाजा है, आई कुड बी रॉन्ग, बट हाँ जितना मैंने मेरे नॉलेज में जितने नाम है कोऑर्डिनेटर्स के, उसमें कोई सेकंड ईयर में नहीं था. तो यही था कि जब मैं बना तो एक तो मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त सौंदर्य डियोन थी, उसके साथ साथ फर्गस मार्क एंथनी भी थे. तो दोनों के दोनों ने, मैं कोई अकेला नहीं था, दोनों ने मुझे, दोनों ने, हम तीनों ने एक्चुअली मिलकर काफी अच्छा काम किया. इसमें सौंदर्य और मेरी काफी अच्छी ये भी थी, हमारी अच्छी एज अ टीम थी काफी. इसमें भी विलेन थी, हम लोग जो है ना, we used to play this, we sort of learned together how to manage this thing. कभी मैं कभी मैं कोई कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन होता था तो उसको हैंडल करने में मैं बेटर था, किसी सिचुएशन में सौंदर्या बेटर होती थी। तो ये हमने दोनों ने, तीनों ने, फर्गस ने भी काफी पॉइंट पे हमने जो है वर्कलोड ऐसे शेयर किया, तो ये चीजें सीखी कि हाँ हाउ टू मैनेज टीम। वो भी ऐसे कि अदर जैसे मैंने बोला कि पीएचडी के भी स्टूडेंट थे हमारे टीम में, अब वो काफी सीनियर हुए ना, मैं सेकंड ईयर लड़का, मेरे टीम में है मेंबर है जो कि
बिल्कुल
हिंदी हिंदी बोर्ड में है, जैसे पीएचडी कर रहे हैं वो, तो काफी सीनियर हो गए, तो वो सब भी डील करना सीखा। उसमें भी कई तरह के अप्स एंड डाउन्स एंड हाउ टू मैनेज एंड कैसे फिर भी उसमें भी अपना विजन कैसे इम्प्लीमेंट करना कि हाँ जो जो हम चाह रहे हैं वैसा ही हो। तो काफी मैं तो बोलता हूँ जैसे इम्पैक्ट से, और लोग भी तुमको कंफर्म करेंगे जो लोग पिछले मेंबर्स हैं या जो लोग आज कहीं नौकरी कर रहे हैं, वो बोलेंगे तुमको ये
बिल्कुल
बात जरूर बोलेंगे कि उड़ान में काम करने से कहीं ना कहीं टीम में काम करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, जो आज जो शायद तुमको व्हेन यू गो एंड वर्क इन लाइक ऑफिस, किसी ऑफिस में भी नौकरी भी करने जाओगे तो तुमको वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं काम आएगा, मे बी 5%, लेकिन वो काम आएगा, रादर देन जस्ट जो पढ़ाई करके जस्ट एग्जाम दिया, स्कूल क्लास किया, एग्जाम दिया और नौकरी करने चला गया। कुछ तो बेनिफिट होता है, क्योंकि जस्ट इमेजिन ना, सेकेंड ईयर लड़का पीएचडी स्टूडेंट को बोल रहा है कि आप ये करके दे दीजिएगा, तो इसमें
बिल्कुल
बहुत बात करने का तरीका है ना जो आपको सीखना पड़ेगा कि वो उनको बुरा भी ना लगे, राइट, वो आपसे इससे बड़े हैं, और उनकी बात भी समझना, उनको भी लेकर चलना, तो ये है काफी इंटरेस्टिंग है, मैं तो काफी चेरिश करता हूँ वो सारे मेमोरीज को।
और ये कोऑर्डिनेटर का चुनाव किस तरीके से किया जाता था?
वोटिंग होती थी, कुछ लोग अपना नाम देते थे, मतलब जो लोग अपना नाम उम्मीदवार के तौर पे अपना नाम देते थे कि हाँ मैं बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और सबके
बिल्कुल
नाम पे वोटिंग होती थी, फुल ऑल ऑल मेंबर्स वोट करते थे। तो जैसे
बिल्कुल
सीजन 5 के सारे मेंबर, जब वो बेसिकली आइडिया है कि सीजन 5 की जब मैगजीन लॉन्च हो गया तो जो टीम है उसको पूरा एक्सपीरियंस हो गया कौन कितना काम किया, राइट, कौन कितना कैसे काम किया, सब सब ने देख
बिल्कुल
लिया लॉन्च के बाद। सो बेसिकली जो सीजन 6 का पहला मीटिंग होता था ना, जिसमें नए मेंबर्स भी आते थे, ठीक है, तो उसी में मीटिंग में जो है वो वोटिंग होती थी, तो सीजन 6 के पहले मीटिंग में ऐसे तुम्हारा चुनाव हो जाएगा, एंड सब बेसिकली नई टीम के सामने नए नए कोऑर्डिनेटर सेलेक्ट हो जाते थे।
बिल्कुल मतलब एक फेयर तरीके से इस चीज का चुनाव किया जाता था।
हाँ सामने ही होता था, इसमें कोई वो नहीं, और हमारे टीचर कोऑर्डिनेटर रहते थे मनीष श्रीवास्तव सर, आई थिंक अभी
जी
भी हैं क्या वो,
जी अभी भी है वो।
हाँ तो वो भी रहते थे, वो भी प्रेजेंट रहते थे, और जो प्रीवियस कोऑर्डिनेटर थे वो उसको फैसिलिटेट कराते थे। हाँ
तो अगर आप ये बताइए कि सीजन 6 में आपने नई चीजें क्या क्या और लाने की कोशिश की?
हाँ नई चीजें, जैसा मैंने एक आइडिया आपको बताया कि हम लोग जो है, क्योंकि वो सोशल मीडिया वगैरह आ चुका था तो हम लोग का आइडिया हो गया था कि सिर्फ एक मैगजीन के नाम पे याद करना है इनफ नहीं होगा, क्योंकि जो उड़ान से ज़्यादा कुछ रिप्रेजेंट करता है। इनफैक्ट इसीलिए हमने बेसिकली मेरे मेरा पर्सनल जो है वीडियो वीडियो मेकिंग में काफ़ी मेरा इंटरेस्ट था, मैं एज अ फिल्म मेकर, और मेरा इंटरेस्ट था उस समय से ही था, तो मैंने वो भी जो है काफ़ी अप्लाई किया। तो उड़ान के जो इफ़ यू सी, अगर आज के डेट में तुम यूट्यूब चैनल पर जाकर देखोगे तो शुरू के जितने 5-10 वीडियोज है ना, वो
जी
सब जो वीडियो का कल्चर है वो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया कि हाँ चलो लेट्स मेक, जो बेसिकली इंटरव्यू वीडियोज हैं कि हाँ
अच्छा
पब्लिक में जाके, सो दैट वाज एक तो वो नई चीज़ थी, वो पहले नहीं एग्जिस्ट करता था, वो हमने 6 में ही पूरा इंप्लीमेंट किया कि क्या सो एक्चुअली पहला पॉइंट ही था कि उड़ान इज नॉट जस्ट अ मैगजीन, तो हम वो एक एक वीडियो है जिसमें आई फाइल नंबर करके उड़ान नॉट जस्ट अ मैगजीन करके ही वीडियो है, वो मेरा लास्ट वीडियो था इनफैक्ट उड़ान 6 में। तो एक वीडियो वाला कल्चर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया, एक सोशल मीडिया वाला कल्चर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया, और इसके अलावा वो जो एक और चीज़ था जो जो हमने कवर स्टोरी का कॉन्सेप्ट था जो सीजन 5 में आया था, उसको नेक्स्ट
अच्छा
लेवल पे ट्राई किया ले जाने का, कंटिन्यू करने का, जो हमने बायोडाइवर्सिटी करके लाया था, जीजीबी बायोडाइवर्सिटी, जो कि वो ना जंगल है इतना, ऐसे बात चलता था जीजीओ में,
कवर स्टोरी
तो
यानी
वो
कि जो आप लोग के मैगजीन का कवर होता था उससे कुछ स्टोरी रिलेट करते हुए, इसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज।
मैं सवाल नहीं समझा, फिर से पूछना।
कवर स्टोरी के बारे में थोड़ा बताइए, उसको
अच्छा,
एक्सप्लेन कर दीजिए। जी
कवर स्टोरी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके ठीक है। तो कवर स्टोरी लाइक किसी भी तरह के कोई भी मैगजीन में जाओगे तो देयर इज ऑलवेज अ कवर स्टोरी। हमारे मैगजीन में नहीं हुआ करता था पहले, तो
अच्छा
सीजन 5 में वो आइडिया इंट्रोड्यूस किया गया था। और सीजन 5 में जैसा मुझे याद है उस समय जो है वो पार्टिकल एक्सेलरेटर जो है ना आया था, नया नया बना था हमारे यूनिवर्सिटी में। तो पार्टिकल एक्सेलरेटर के ऊपर कवर स्टोरी किया गया था। वो एक आई थिंक छोटा अटेम्प्ट था। उसके बाद वही 6 में हमने जो है हमने ट्राई किया कि जो कॉन्सेप्ट है कवर स्टोरी का उसको थोड़ा एक्सटेंसिवली लिया जाए। तो हमने जो है इंटरनली काफी ऐसे सबने आइडिया पिच किया और फिर हमने जो है फाइनली जो है एक आइडिया पर हम लोग स्टिक किए, जो कि बहुत सच बताऊँ तो बहुत लोग थे जो लोग कह रहे थे कि ये आइडिया मत लो, बट
अच्छा
मैंने ही बोला कि नहीं ये आइडिया करना चाहिए बिकॉज इसमें कुछ अलग बात है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। एंड वो आइडिया था जीबीवी बायोडाइवर्सिटी, राइट। तो उसमें बायोडाइवर्सिटी में क्या था कि हमने बोला कि चलो क्योंकि ऑलरेडी मैंने जैसे बताया मेरे साथ जो है कोऑर्डिनेटर थे फर्गस मार्क एंथनी। तो फर्गस मार्क एंथनी फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के काफी प्रोमिनेंट स्टूडेंट्स में से एक रहे हैं। तो आई न्यू कि उनको एक्सपर्टीज है उनका। एंड तो मैंने बोला कि चलो ऐसा करते हैं पूरा यूनिवर्सिटी में जितना जंगल फैल है जितना जानवर दिखता है ना लेट्स डॉक्यूमेंट देम, उनको डॉक्यूमेंट किया जाए और उनको फोटोग्राफी करो और उसके बारे में कुछ डिटेल लिखो एंड कहाँ पे पाया जा रहा है ऐसे लिखो कि सो दैट इट जस्ट बिकम समथिंग इंटरेस्टिंग टू रीड ऑन। एंड हमने
बिल्कुल
जब किया
बिल्कुल
वो एक्सरसाइज जब किया तो ऐसा निकला कि काफी रेयर बर्ड्स भी हैं वहाँ पे, काफी रेयर सम स्मॉल रेप्टाइल स्मॉल कुछ कुछ है, रेयर रेयर कैटेगरी के भी है ना एनिमल्स वहाँ पे अवेलेबल थे। तो हमने भी एज ए स्टोरी जो है काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी बना। सबने बोला कि कुछ लोग शॉक में चल गए कि हाँ हम लोग तो मजाक में बोलते थे कि जानवर है जानवर है, बट यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग जानवर है ऐसा हो गया।
बिल्कुल
एंड एंड जैसा मैंने बोला कि ये स्टोरी इतनी ऊपर गई कि नेक्स्ट ईयर के जो यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोस्पेक्टस था ना, जो आई थिंक कौन सा होता है तुम लोग का एग्जाम, वी
पहले
विश्वविद्यालय वी टी ना, वेस्ट विश्वविद्यालय एंट्रेंस टेस्ट से जो होता है राइट, वी टी
वैसा
टेस्ट।
होता था, अब ये सीयूईटी होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी
अच्छा
एंट्रेंस।
सेंट्रल यूनिवर्सिटी
जी
राइट, पहले इसका अपना एग्जाम था राइट। तो हाँ वही वी टी का जो जो भी लोग ऐसे स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी एडमिशन लेते थे उनको प्रोस्पेक्टस मिलता था यूनिवर्सिटी का। उस प्रोस्पेक्टस में भी इनफैक्ट नेक्स्ट ईयर के उन्होंने बायोडाइवर्सिटी को एज अ फीचर डाला कि हाँ हमारे यूनिवर्सिटी में आई है काफी इंटरेस्टिंग जानवर भी अवेलेबल है। सो दैट यू कैन से कि तुम बोल सकते हो कि वो एक इम्पैक्ट हुआ उस स्टोरी का कि हमारी लीग स्टोरी जो है फॉर्मली उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है तो
बिल्कुल। और ये जो बात एक जीजू के स्टूडेंट बड़े मजाक में कहते हैं कि जंगल है यहाँ जानवर हैं, वो
हाँ
वास्तव
हाँ
में
हाँ
पता चला कि वाकई में बड़ी सारी स्पीशीज वहां पे उपलब्ध हैं।
हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली
जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बहुत सारी चीजें हमें बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में आप हमारे श्रोताओं को कुछ कहना चाहेंगे या कुछ संदेश देना चाहेंगे?
आई थिंक आज के डेट में ऐसा कहना कोई अब कोई ऐसे स्पेशल बात की नहीं रहेगी कि सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है अब ये प्रूवन हो चुका है, अब तो ऐसा जमाना आ गया है कि बिना पढ़ाई के भी लोग बहुत कुछ कर ले रहे हैं। मतलब हम वापस से एक ऐसे युग में आ गए हैं जहाँ जरूरी नहीं कि आपके पास डिग्री है तो आप कुछ कमाल ही कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है बस डिग्री है। तो अभी एक ऐसा जमाना आ गया है कि आप कर क्या रहे हैं वो मैटर करता है। मेरा ऐसा मानना है एटलीस्ट मेरे केस में तो हुआ कि जो एक डिफरेंट क्लब्स हैं वट एवर एक्टिविटीज हैं या कल्चर ग्रुप्स हैं जैसे कि अर्चेंस उड़ान और एनीथिंग जो भी जो कर रहा है जैसे डांस के लिए कोई अभिनंदन कर रहा है या जो कुछ भी आई डोंट नो आज कुछ और होगा वहाँ पे, तो जो कुछ भी कर रहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो जो सिखाते हैं ना वो कोई किताब नहीं सिखा सकती, कोई कोर्स नहीं सिखा सकता। तो मेरा मेरा ये इंकरेजमेंट रहेगा कि इनको भी सीरियसली लेने की ज़रूरत है। आई नो बहुत लोग आज भी बहुत लोग हैं जो थोड़ा सा इवन स्टूडेंट्स बड़े लोग छोड़ो स्टूडेंट्स भी हैं जो मैं खुद अपने पीयर्स में अपने बैचमेट्स में ऐसा ऐसा मैं थोड़ा सा मैं फील करता था कि लोग मुझे ऐसे देखते हैं कि हाँ ये तो काम नहीं करता है, ये तो पढ़ाई नहीं करता है, ये तो बस यही सब में लगा रहता है। बट आज प्रूफ है, आज आज मैं आईआईटी भी गया पढ़ाई करने उसके बाद से, और उसके बाद से आज मैं अच्छी नौकरी भी कर रहा हूँ। तो दैट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज की कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स मैंने सीखे ये सब एक्स्ट्रा एक्टिविटी करके। एंड डेफिनेटली सर, सभी को किसी अगर इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट नहीं भी है तो एटलीस्ट थोड़ा सा बिल्ड करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। किताबें पढ़ो, ज़रूर पढ़ो, सब कुछ करो, लेकिन कुछ अलग भी रखो, क्योंकि किताब में जो लिखा है वही एक्चुअल लाइफ में इम्प्लीमेंट होता है ना। एक्चुअल लाइफ का प्रैक्टिस जब तक नहीं होगा तो अब तक कुछ नहीं होगा। तो हाँ, यही है, यही मैसेज है, एक्सप्लोर करते रहो, आगे बढ़ते रहो।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे संदेश के लिए।
थैंक्स।
फिलहाल मेरे साथ हैं ऋषभ यदु, जो कि जीजीयू के उड़ान टीम में एज अ मार्केटर हैं और अभी ही पढ़ाई कर रहे हैं अपने एमबीए की। तो आइए इनसे इनके बारे में और जानकारी लेते हैं और बात करते हैं इनसे इनके और उड़ान के बारे में।
नमस्कार सभी को, मैं ऋषभ यदु हूँ और मैं अभी श्री बालाजी यूनिवर्सिटी पुणे से एमबीए कर रहा हूँ मार्केटिंग में। एंड उड़ान में तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, वहाँ से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ भी मैं मार्केटिंग में ही था और अभी भी मैं अपना स्पेशलाइजेशन एमबीए मार्केटिंग में ही कर रहा हूँ। तो बहुत कुछ ऐसा है कि जैसे जब मैं उड़ान में जुड़ा, जब ऑडिशन हुआ तो स्टार्टिंग में इतना अच्छा तरीके से ऑडिशन लिया गया था, लाइक हर एक फेज में डिवाइड करके। तो जिस तरीके से फिल्ट्रेशन था उस समय ऑडिशन का, वो सब बहुत अच्छा था। एंड उसके बाद जैसे ही हम उड़ान में जुड़े, उसके बाद धीरे धीरे हमको बताया गया कि कैसे कैसे हमको सोशल मीडिया हैंडल करना है, कैसे पोस्टिंग जाएगी उसमें, क्या क्या कैप्शन जाएंगे, क्या हैशटैग्स चलेंगे। उसके बाद ये समझ में आया कि अलग अलग सोशल मीडिया के लिए अलग अलग तरीके का थोड़ा सा कंटेंट होता है या कैप्शंस होते हैं, हैशटैग्स अलग अलग होते हैं उनके थोड़े थोड़े। उसके बाद ऐसा है कि अब जैसे कि हम एक बार सोशल मीडिया देख लिए तो उसको दो तीन तरीके से हम मार्केटिंग कर सकते हैं, जैसे कि एक ऑर्गेनिक हो गया, एक इनऑर्गेनिक हो गया। तो हम ज़्यादातर तो वैसे ऑर्गेनिक ही यूज़ किए हैं, कि हमने कभी कभी पेड वर्जन यूज़ नहीं किया है। बट थोड़ा सा यहाँ पर हमको लगता है कि हमको पेड वर्जन यूज़ करना चाहिए अब करके,
तो वो ज्यादा बेनिफिशियल।
हाँ, तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ज्यादा कवर कर पाएंगे हम अपने जीजीयू को और अपने बिलासपुर को। तो वो बहुत ही एक अच्छा चीज है कि हम अगर पेड वर्जन यूज है तो इन फ्यूचर अब हमारे जैसे अगर जूनियर्स आते हैं तो हम उनको बोलेंगे कि आप पेड भी वर्जन यूज करो, बहुत ही अच्छा चीज है करके, और उनको भी सीखने को मिलेगा। उसके बाद फिर अब जैसे कि ये तो हमारा सिर्फ उसके बारे में हो गया, अब जैसे कि उसमें जब कंटेंट डलता था तो भी बहुत कुछ समझ में आया कि कंटेंट कैसे डलता है। अब ऐसा लगता है कि बस एक फोटो को देख के कि वो फोटो बस खींची और डल गई, बट ऐसा नहीं होता है। हमारा पूरा फोटोग्राफी बोर्ड अलग अलग बोर्ड है, वहाँ पहले वो फोटोज क्लिक होते हैं, पांच छह फोटोज आते हैं, उसके बाद उसमें फिल्टर होता है, उसके बाद अलग कैप्शन आता है उसके लिए पर्टिकुलरली उस फोटो के लिए या फिर उस आर्ट वर्क के लिए। उसके बाद फिर हम उसको डन करके एक टाइमिंग होता है, जैसे कि हम लोग 8:30 बजे के आसपास पोस्ट करते हैं, 8 से 9 के बीच में। क्या है कि उस टाइम पे ऐसा होता है ज्यादातर कि हमको पीक में बूस्ट मिल जाता है, लेकिन आजकल जो टाइम है वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया। जैसे कि मैं पुणे में हूँ तो वहाँ हम पोस्ट करते हैं, अगर 9:30 to 10 के अप्रॉक्स अगर पोस्ट हम करते हैं तो हमारा वहाँ पे क्राउड ज़्यादा खिंचाता है, हमारा व्यूज वहाँ ज़्यादा आता है। तो अगर यहाँ का टाइम हम वैसा चेक कर ले, क्योंकि पुराना चला रहा है 8 से 9, अगर क्या पता यहाँ का जैसे शेड्यूल है उस हिसाब से 9 बजे वाला जो टाइम है अगर वो बेटर है तो उसमें हमको रीच मिलने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर मार्केटिंग में ये भी एक इम्पैक्ट रोल प्ले करता है कि किस टाइम पे आप डाल रहे हो। तो
अलग अलग जगह के हिसाब से पोस्टिंग का टाइम भी स्विच
थोड़ा सा स्विच होता है। हाँ, अगर आप नेशनल हो, अब पूरा नेशनल कवर कर रहे हो तो फिर तो आप एक आइडल टाइम 9 लेके जा सकते हो, लेकिन अगर सिर्फ मेन अगर बिलासपुर कवर करना है तो वहाँ का एक क्राउड और वहाँ का कैसा वो है उसको देख के आप अगर करते हो तो वो बेटर ऑप्शन रहता है, रीच बढ़ जाती है।
वापस चलते हैं आपकी ऑडिशन की ओर और ऑडिशन के बारे में बातचीत करते हैं
जी,
कि जब आप ऑडिशन देने आए तो आपको पता चला कि कितने बोर्ड्स हैं, क्या उससे पहले आपको पता था, और फिलहाल कितने बोर्ड हैं आप उसके बारे में बताइए।
नहीं, पहले तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं था, पहले मुझे लगा था कि ऐसे ही होंगे फोटोग्राफ आर्ट, मुझे मार्केटिंग के बारे में तो पता भी नहीं था। तो मैं जब गया मैं देखा तो टोटल 7 बोर्ड थे, उसमें से ऐसा था कि हमको 4 में ही हम उसमें इंटरव्यू के लिए दे सकते हैं। तो मैंने 2 के लिए दिया था, एक तो मार्केटिंग के लिए और दूसरा आर्ट के लिए दिया था, थोड़ा पेंटिंग कर लेता हूँ मैं भी तो।
अच्छा
जी, तो फिर मेरा मार्केटिंग के लिए हो गया सेलेक्शन। ओवरऑल आफ्टर इंटरव्यूज, आफ्टर ग्रुप डिस्कशन एंड आफ्टर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, तो इट वाज अ वेरी गुड जर्नी ऑफ ऑडिशन। एंड हमारे यहाँ 7 बोर्ड है, सबसे पहला जैसे कि फोटोग्राफी हो गया जिसमें फोटो क्लिक करना होता है बच्चों को और हर एक इवेंट्स को वो कवर करते हैं, उसके बाद होता है आर्ट बोर्ड जहाँ पर वो पेंटिंग्स या फिर अलग अलग तरीके से आर्ट एंड क्राफ्ट बनाते हैं, उसके बाद फिर अपन का आ जाता है जीडी ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या होता है कि जैसे कि कुछ भी अगर डिजाइनिंग वर्क है या फिर जैसे मैगजीन ही आप अगर हमारा देखोगे तो उसका पेपर का जो मतलब जो बैकग्राउंड डिजाइनिंग है कवर पेज डिजाइनिंग है वो हमारे ग्राफिक डिजाइनर्स करते हैं। पीडी में यही होता है कि उसमें जैसे कि अगर आप मैगजीन भी देख रहे होगे तो उसमें जो हर एक पेजेस में कैसे बैकग्राउंड में हुआ है जो भी ग्राफिक डिजाइनिंग होता है वो हमारे ग्राफिक डिजाइनर्स करते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है हमारा वेबसाइट बोर्ड। हमारा जो वेबसाइट है वो भी लॉन्च है, अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो udanggv.com करके, उसमें आपको हमारा उड़ान का सारा मैगजीन मिल जाएगा उसका सॉफ्ट कॉपी, और वहाँ पर आप देख सकते हो हमारे बोर्ड मेंबर्स को, सारे बोर्ड देख सकते हो कि हम क्या करते हैं, हमारे फोटोज मिल जाएंगे गैलरी सेक्शन में। उसके बाद फिर हमारा आ जाता है मार्केटिंग बोर्ड।
और इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जितना हमें पता है उस हिसाब से कि ये जो वेबसाइट और सारी चीजें हैं ये स्टूडेंट्स ही डिजाइन करते हैं।
हाँ, ये पूरा वेबसाइट मतलब स्टार्टिंग डिजाइनिंग से लेके डोमेन परचेज करने तक और पूरा लॉन्च करने तक सारा काम बच्चों का ही होता है। जो ये उड़ान है ये स्टूडेंट ड्रिवन मैगजीन है, इसमें हर एक काम कुछ भी अगर दिख रहा है तो वो स्टूडेंट्स ही करते हैं। टीचर कोऑर्डिनेटर्स होते हैं हमारे पास बट मेजरली तो स्टूडेंट्स का इसमें रोल होता है। एंड उसके बाद हम आ जाते हैं जो हमारा पांचवा बोर्ड है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में जैसे कि हमको सोशल मीडिया हैंडल करने होते हैं और एक तरीके से अपने ग्रुप को भी देखना होता है, हर जगह से कंटेंट कलेक्ट करना होता है, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन लेनी होती है क्या चल रहा है कैसा। एंड जैसे कि मेन टाइम जैसे होता है कि सी टू सी जब हम लोग क्लास टू क्लास प्रमोशन करने जाते हैं या फिर जब लॉन्च होने वाला है मैगजीन तो वो सब टाइम पे भी मार्केटर जो होते हैं अपना मेजर रोल प्ले करते हैं। उसके बाद फिर अब हमारे आ जाते हैं एडिटोरियल्स, जैसे कि कुछ भी अगर लिखा होता है तो फिर वो कहाँ से लिखते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो बोर्ड है स्पेसिफिकली, एक है इंग्लिश एडिटोरियल एक है हिंदी एडिटोरियल। तो इंग्लिश एडिटोरियल में कुछ पाँच से छः मेंबर, हर एक उसमें पाँच से छः लोग होते हैं ज़्यादातर या सात हो सकते हैं, और वो लोग फिर जैसे कि कुछ भी पोएम्स या फिर कैप्शंस कुछ भी फोटोग्राफ में लिखना है या आर्ट वर्क में देना है तो उस ग्रुप में फिर उस फोटो के लिए कैप्शंस आते हैं और उसमें से एक सेलेक्ट होकर फिर हम उसको पोस्टिंग में डालते हैं। पहला तो ये हो गया। अब जैसे कि हम एक फ्रेंडशिप वीडियो बनाए थे तो उसमें जो पीछे में आवाज़ दिया गया था वो भी एक स्टूडेंट के द्वारा ही दिया गया था, और उसमें भी जैसे कि अब जब पीछे आवाज़ देना है तो उसके लिए पहले थोड़ा कंटेंट राइटिंग होता है तो हमारे जो राइटर्स एडिटोरियल बोर्ड है वही लिखती है। और जैसे कि जब अब मैगजीन हम लॉन्च करना होता है तो उससे पहले क्या होता है कि हम लोग को कंटेंट इनवाइट करना होता है, तो कंटेंट इनवाइट करने के बाद उसको फिल्टर भी करना होता है, तो वो फिल्ट्रेशन भी जो होता है वो हमारे सबसे पहले तो हमारे स्टूडेंट्स करते हैं और उसके बाद उसको हम टीचर्स को एक बार शो करते हैं कि अगर इसमें हमारी कोई गलती है तो बता दीजिए, और उसके बाद फिर उसको हम मैगजीन में डाल देते हैं। तो इसलिए एडिटोरियल्स का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है।
बिल्कुल, अंत में आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने ये मैगजीन क्लब को एज अ मार्केटर ज्वाइन किया था।
हाँ।
और अभी आप MBA कर रहे हैं मार्केटिंग में।
हाँ।
तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो थोड़ी थोड़ी चीजें थी क्या वो आपको हेल्प की?
हाँ डेफिनेटली, मतलब उड़ान में जुड़ने के बाद एक तो पहले सबसे पहले मतलब ये चीजें तो हेल्प की बट कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ा, सोशल स्किल्स बढ़ा कि कैसे, और टीम स्पिरिट भी बढ़ा कि कैसे एक टीम में काम करना है कैसे लीड करना है। तो बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी था हमारे पास उड़ान, और ये भी सीखने को मिला जैसे कि मैं मार्केटिंग का कॉमर्स बैकग्राउंड से था, मेरे को वेबसाइट GD एडिटोरियल से सबके बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था, ऐसा लगता बस हो जाता है करके, लेकिन फिर जब मैं यहाँ आया तब पता चला कि नहीं ऐसे नहीं होता है, उसका एक प्रोसेस है उसके बाद ही होता है करके। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ मैंने सीखा है, और अभी तो बस मैं यही कहूँगा कि बहुत जल्दी हम सीज़न 10 का देख रहे हैं कि सीज़न 10 मैगजीन हम प्रोवाइड करें यहाँ यूनिवर्सिटी में, अभी तो यही है हमारा प्लान आगे का।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
तो श्रोता साथियों, उड़ान के बारे में और जानने अब हमारे साथ हैं अपूर्व आजाद नंदे, जिन्होंने अभी हाल ही में अपना LLB कंप्लीट किया है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से, और ये सीजन 9 में उड़ान से जुड़े थे एज अ फोटोग्राफर। तो आइए इनसे इनके और उड़ान के सफर के बारे में जानते हैं।
धन्यवाद अलंकिता मुझे मौका देने के लिए, एंड थैंक्स टू द रेडियो अर्प की ग्रेट इनिशिएटिव लिया उसने, जिसके तहत वेरियस क्लब्स हैं GGU में हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया है, तो थैंक्स टू द रेडियो अर्प आल्सो।
आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से हमें चीजें बताई है और बताने के लिए लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं। तो आपका सफर उड़ान के साथ सीजन 9 में हुआ था यानी कि 2019 में, तो अपने सफर के बारे में बताइए कि कैसे आपने उड़ान से जुड़ने का फैसला किया और फिर कैसा रहा आपका सफर?
देखिए, उड़ान का सफर था मेरा काफी ड्रामेटिक था और काफी मतलब अलग ही इस तरह का इसका मोटिवेशन था। मैं खुल के बोलूँ तो मुझे शुरू में पता नहीं था कि उड़ान क्या है, कैसा है। एक दिन ऐसी जब मैं जा रहा था अपने कॉलेज की ओर, तो मैंने देखा कि कुछ एक होर्डिंग लगी हुई है उड़ान नाम की मैगजीन का। तो मैं क्लास बंक मारने के बहाने उड़ान का जाके इंटरव्यू दे दिया मैंने। तो उड़ान की शुरुआत ऐसी होती है कि मतलब ऐसा कोई डिसाइडेड था नहीं मेरा। मैं एक दिन रैंडमली कॉलेज जा रहा था और कॉलेज जाने की इच्छा नहीं हो रही थी, जैसे कि हर फर्स्ट ईयर के छात्र के साथ होता है। ठीक है, तो मैंने देखा कि उड़ान का इंटरव्यू चल रहा है। मैंने बोला चलो क्लास ही बंक हो जाएगी, हाजिरी भी मिल जाएगी, कुछ क्यों ना चलो उड़ान का इंटरव्यू दे आते हैं। तो मुझे लगता था उस समय कि मेरी लेखकी बहुत शानदार है, तो चलो क्यों ना लिखते हैं कुछ। मैं गया तो मैंने देखा कि यहाँ फोटोग्राफी है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, लेखकी है, बाकी ये समझ में आई नहीं, टेक्निकल थी काफी थी। और हाथ में एक फोन था 8,000 रुपए का, तो उससे फोटो खींच सकते थे। तो मैंने दोनों का साक्षात्कार दिया, इंटरव्यू दिया मैंने, और साक्षात्कार जो दोनों का मैं ठीक ठीक गया। जब मुझे टास्क मिला कि आपको फोटो खींचनी है उड़ान के लिए, तो वो एक अद्भुत अनुभव था कि जहाँ एक फर्स्ट ईयर का बच्चा जो लॉ की पढ़ाई कर रहा है, व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के लोअर एंगल शॉट लेने के लिए पूरे जमीन में लेट गया था और आसपास के लोग देख रहे हैं, हाँ हो क्या रहा है। तो वो एक दिन था। और उसके बाद एक सेकेंड राउंड का जो इंटरव्यू होता है वो हुआ। मुझे बिल्कुल उम्मीद थी नहीं कि मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा, मेरा कुछ हो पाएगा, लेकिन वो एक दिन था। और एक दिन आज का है, 5 साल बाद, उड़ान में जो है 5 साल हो गया। इस ड्यूरेशन में जो चीजें बीती, मतलब जब मैंने उड़ान ज्वाइन किया तो मैं फर्स्ट ईयर में था और बिल्कुल कॉलेज के बारे में कुछ अंदाजा नहीं, कुछ क्या हो रहा है कॉलेज में, हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं कॉलेज में। लेकिन उड़ान ने जो दिशा दिखाई, जो हमारे सीनियर्स थे जिन्होंने हमें इतने अच्छे से गाइड किया, मतलब आप ये समझ चलिए कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़ की एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां तकरीबन 8,000 बच्चे हैं। और उन 8,000 बच्चों में से जो सबसे ज्यादा प्रतिभावान है, सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, वो वैसे छात्र जो है उड़ान से जुड़े थे। जो मेरा बैच था स्पेशली, आज मैं थोड़ा सा अगर मैं पीछे जाऊं या फिर थोड़ा रिसेंसी में आऊं, तो जितने मेरे साथ जो मेरे कलीग थे, आज हर कोई कोई जर्मन, जो मेरा साथ वाला था राजगौतम, जिसने साथ में इंटरव्यू लिया था, वो जर्मनी में है। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जो आज अच्छे अच्छे कंपनीज में काम कर रहे हैं। तो वो एक गोल्डन एज था उड़ान का, और जो बैच था वो गोल्डन बैच था। तो मुझे एक मौका मिला कि मैं उस बैच से जुड़ पाऊं। तो यहाँ जो लीडरशिप स्किल होती है, जो जो सीखने की संभावनाएं होती हैं कि कोई भी चीज को कैसे परफेक्टली करना है और कैसे क्रिएटिवली करना है और कैसे इम्पैक्टफुल करना है, तो वो चीजें उड़ान ने मेरे को बखूबी सिखाई। और जो सीख मेरे को उड़ान से मिली थी, उसमें उसका जो प्रयोग है मैं आज तक करता आ रहा हूँ। जो टीम स्किल मैंने वहां सीखी थी, जो वक्तव्य का तरीका मैंने वहां सीखा था, जो चीजों को मैनेज करने का जो तरीका है मैंने वहां सीखा था, मैंने उसको बहुत सारे फील्ड में अप्लाई किया। जैसे मेरा जुड़ाव एबीपी से रहा है, जहां मैं स्टेट तक के एग्जीक्यूटिव तक मैंने काम किया है। जो उड़ान से सीख मिली थी मैंने उसको वहां भी अप्लाई किया, मैंने संगठन के स्तर पर भी बहुत चीजें अप्लाई की। तो आपको उड़ान, जो उड़ान ने मुझे सिखाया था कुछ चीजें, कि चीजें कैसे हैंडल करनी है, कैसे मैनेज करनी है और क्रिएटिवली कैसे करनी है, इसको बहुत सारे आयामों में यूज किया। और उसका परिणाम स्वरूप यह है कि आज मैं यह महसूस करता हूँ कि अगर मैंने उड़ान जो ज्वाइन किया था उसमें जितना मिलना था उससे कई गुना ज्यादा मिला। और हर छात्र तो मतलब ऐसे किसी समूह में जुड़ना चाहिए जहाँ क्रिएटिव लोग हों। तो मेरा
बिल्कुल
थोड़ा सा
जी, हम लगातार अभी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के विभिन्न क्लबों से बात कर रहे हैं, उनके मेंबर से बात कर रहे हैं और उन क्लब्स के बारे में जान रहे हैं। और इस बीच हमें पता चला कि उड़ान एक सबसे पुराना क्लब है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का।
हाँ जी
तो इस बीच कोरोना काल भी आया, उस बीच भी आप लोग लगातार मेहनत किए और आप लोगों की मैगजीन बनी, तो उस वक्त आप लोगों ने किस तरीके के चैलेंजेस फेस किए उसके बारे में कुछ बताइए।
अगर कोरोना की बात करूं तो बहुत एक दुखद वाकया हुआ था। जिस दिन लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ था, उस लॉकडाउन के अनाउंसमेंट के पहले कॉलेजेस हर जगह से अफरा तफरी का कोहराम मचा हुआ था। अनसर्टेनिटी थी, केओस था, एक पेंडामोनियम जिसको हम बोलते हैं, कर्ड वर्ड पेंडामोनियम था, सरकारी स्तर में भी और प्रशासनिक स्तर में भी। तो हमें ये था कि हमें जो मैगजीन हमने बनाई थी पूरे साल भर मेहनत करके, उसका परिक्षेपण था, लॉन्च था उसका। तो हम सब कैंटीन में बैठे थे और हम ये डिसाइड कर रहे थे कि कौन से थीम में हम जो है मैगजीन को लॉन्च करेंगे, और ये डिसीजन चल ही रही थी। उस डिस्कशन के हम सब दोस्तों से मिले जुले बातचीत किया। अब क्या पता था कि जिन दोस्तों से हम मिल रहे हैं शायद वो आखिरी बार मिलना हो रहा है। तो ऐसी हमारा वहाँ बातचीत चली कि ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और उड़ान का जो एक होता है स्वर्णिम युग को उसका चरम पे था। हम सब कुछ हमारे पास रेडी था, हम बिल्कुल एक परिक्षेपण के लिए लॉन्च के लिए तैयार थे, लेकिन अचानक से आता है मैसेज कि आपकी छुट्टी है 3-4 दिन के, आप घर चले जाइए ड्यू टू कोरोना वायरस। हम बोले ठीक है, 4-5 दिन घर जाते हैं। तो हम थोड़े बहुत सामान लेकर के अपने, जो कि हर कोई कोरोना टाइम समय कर रहा था, सामान ले चले गए, एक हफ्ते घर लौटना ही है। अचानक फिर 26 तारीख मार्च, चाहे 26 या 28 मार्च की बात है, मोदी जी का भाषण होता है। मोदी जी कहते हैं कि मित्रों अब कोरोना के चलते 21 दिन का लॉकडाउन है। हमने कहा चलो 21 दिन है बीत जाएंगे। तो इन 21 दिनों में हमने जो लॉन्च है, मतलब हर साल उड़ान का एक परिक्षेपण या लॉन्च इवेंट होता है, जिसमें हम पूरी साल भर की जो हमने जो काम किया है हम उसकी प्रदर्शनी लगाते हैं। साथ साथ हम ये दिखाते हैं कि कैसे जो बहु प्रतिभावान बच्चे हमारे यहाँ हैं उड़ान के अंदर भी और भी छात्र हैं, तो उनके द्वारा जो जो दी गई सामग्री है, कंट्रीब्यूशन है प्रदर्शनी के लिए, हम उसको भी दिखाते हैं, और ये सारी चीजें चलती हैं। तो ये बेसिकली लॉन्च होता है हमारा। तो हम उस पर डिस्कस क्या करते थे कि लॉन्च में क्या होगा कैसे होगा। जब वो 21 दिन और 21 दिन बढ़ गया तो थोड़ा सा हमें भी लगा कि यार थोड़ा डिले हो रहा है, छुट्टियां आने वाली हैं,
चीजें हाँ
चीजें बढ़ते जा रही हैं। तो हमने उस दौरान बहुत सारी एक्टिविटीज करना चालू की, जैसे हम खुद को एक होता है ना कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मतलब समय को जाया ना करना। जब सारी दुनिया वहां सीरीज देख रही थी, वेब सीरीज देख रही थी, तो उड़ान का हर एक बच्चा अपने आप को डेवलप कर रहा था, इसलिए नहीं कि उसको मतलब कुछ और लाइफ में आगे, मतलब कि अचीव करना आगे करना है, नहीं, उड़ान को हम और बेहतर कैसे बना सके। मतलब आप देखिए कि पिछले 1 साल में हमारे अंदर ये दिल आ गया था कि एक मैगजीन क्लब है, उसको हमें कैसे और आगे लेके जाना है और कैसे उसको और बेटर बनाना है और कैसे उसको एक ऊंचाई जो है ना उस ऊंचाई के पार लेके आना है। तो हम हर दिन हमारी मीटिंगें हुआ करती थी, हम डिस्कस करते थे कि ये कहाँ जाएगा वो कैसे जाएगा। हम जो फोटोग्राफर्स थे मेरे ऐसे, हमने एडिटिंग का कोर्स सीखा कि एडिटिंग कैसे करते हैं। अगर आप कभी मेरे प्रोफाइल में स्टम्बल अपॉन करेंगे तो मैंने ब्लैक एंड व्हाइट ह्यूमन फोटोग्राफी जो एक होती है, मैंने उस पर काम करना शुरू किया। कुछ लोगों ने लाइट पेंटिंग काम करना शुरू किया, जो ग्राफिक डिजाइनर थे उन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग की, जो आर्टिस्ट थे उन्होंने स्केचिंग पे अपना हाथ वह साफ किया, और मतलब जो प्रतिभा थी उनकी वो और बढ़ती गई। तो लॉकडाउन
के ऊपर काम किया, अपने आप को बेहतर करने के लिए
बेहतर किया अपने काम को, ये था। तो ऐसा में लॉकडाउन बीता, और उस दौरान हमने बहुत सारी चीजें की। मैक्सिमम चीजें तो ऑनलाइन हुआ करती थी, कुछ हमारे जो साहसी कोऑर्डिनेटर्स थे वो कई बार ऑफिस भी आए, उस ऑफिस में आकर के बैठ के ऑफलाइन में उन्होंने काम किया, इतने भयावह वातावरण के बावजूद भी। तो ये सारी चीजें चली, ये कोरोना का दौरा ब्यौरा था बेसिकली। उसके बाद कोरोना के बाद हम तो फिर ऑफलाइन आए, फिर ऑडिशन हुआ। ये तो ये बेसिकली कोरोना का जो हुआ इन पिछले 8-9 महीनों कोरोना दौरान।
बिल्कुल, मतलब कोरोना के दौरान भी आप लोग लगे हुए थे लगातार मैगजीन पर
हाँ जी
और अपने आप को बेहतर करने में।
हाँ जी
जी तो इतनी सारी चीजें आपने बताई, अपने बारे में बताए और उड़ान से आपको क्या क्या सीखने को मिला ये सब आपने बताया। अब आप गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के छात्रों को और हमारी श्रोताओं को क्या सलाह देना चाहेंगे या क्या संदेश देना चाहेंगे?
देखिए, मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि जब भी आप कॉलेज में आते हैं, या अगर आप अभिभावक हैं या पेरेंट्स हैं, तो जब भी आप अपने जब बच्चे जब बोलते हैं ना कि हम कॉलेज जा रहे हैं, तो उन पे ये दबाव मत डाला करिए। और आप अगर छात्र हैं तो खुद पे ये दबाव मत लीजिए कि हम अगर कॉलेज जा रहे हैं तो हम कॉलेज जाके सिर्फ पढ़ाई ही करनी है हमको, और हमको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करनी है। मेरी बात मानिए, आपकी पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है ही है, एकेडमिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, जो विभिन्न प्रकार के समूह हैं जिसमें आपकी रुचि हो, मुझे तो खैर फोटोग्राफी में रुचि थी तो मैं फोटोग्राफी के मतलब आयाम में रहा, लेकिन आपको जिसमें भी रुचि हो, लेखन में रुचि हो, आपको कोडिंग में रुचि हो, आपको आजकल जो नया ट्रेंड आ रहा है AI में रुचि हो, ग्राफिक डिजाइनिंग में रुचि हो, संगीत में रुचि हो, आपको नाटक में रुचि हो, आपको डांस में रुचि हो, तो किसी भी प्रकार के आयाम में आपको अगर रुचि है तो आप उस अपनी रुचि को परस्यू करिए, अपनी रुचि को व्यर्थ जाने मत दीजिए। आपकी जो रुचि है, आपकी जो प्रतिभा है, उसको और निखारने के लिए आप जो भी समूह है, पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो, एक्स्ट्रा करिकुलर हो, डिपार्टमेंटल हो, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल हो, आप किसी ना किसी एक समूह जुड़िए। आप देखिएगा कि आपके व्यक्तित्व में जो परिवर्तन आएगा, आपके आत्मविश्वास में जो परिवर्तन आएगा, वह आपको पढ़ाई लिखाई से नहीं मिलने वाला, पढ़ाई लिखाई से मिलेगा, लेकिन वो टीम स्पिरिट या समूह में काम करने की क्षमता और एक नेतृत्व करने की क्षमता आपको जो जो इन सारे समूहों से मिलेगी, ऐसे उड़ान है ऐसे एक अच्छे समूहों से मिलेगी, वो आप कहीं और नहीं मिलेगी। साथ ही साथ आपकी जो कंपनी है या आपके जो साथ में लोग रह रहे हैं वो कैसे हैं, वो डिसाइड करता है कि आप कैसे व्यक्तित्व बनेंगे। तो जब आप किसी अच्छे समूह में जुड़ते हैं जहाँ बहुत अच्छे और प्रतिभावान लोगों के साथ साथ बातचीत करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, स्वाभाविक सी बात है आपका जो व्यक्तित्व है वो निखरेगा ही निखरेगा। और अगर व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा तो मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप किसी भी क्लब में जुड़ें और उस क्लब में अपना समय दें, और जब तक समय दे पाए अच्छे से समय दे करके उस क्लब को और ऊंचाई ले जाइए। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कब क्लब ऊपर गया और कब आप क्लब के साथ साथ ऊपर उछल गए। तो ये मैं संदेश रहेगा।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, काफी अच्छी बात आपने कही। और बिल्कुल मेरा भी यही मानना है कि पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए जिससे हमारा व्यक्तित्व का विकास होता है।
जी लंकिता।
तो श्रोता साथियों, आज के अंक में हमने बातचीत की उड़ान के मेंबर से और जानी कुछ बातें उड़ान के बारे में। इसी के साथ हमने गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के सारे क्लब्स के बारे में जान लिया है। आगे भी हम मिलते रहेंगे और जानेंगे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के बारे में कुछ और बातें। फिलहाल दीजिए आज के अंक से अलंकृता को इजाजत। आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए आपका अपना रेडियो अर्पा रेडियो।
गजर की तरह ब्रिटिश अंदाज में अपनी आवाज के साथ बिलासपुर वासी,
बिलासपुरियंस की आवाज,
ये है आपका अपना अर्पा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर और अर्पा वेब रेडियो।